ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभिस्संस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है कार्यक्रम में। आज हम भगवद गीता से चर्चा करेंगे। भगवद गीता का चैप्टर 12 है, 12वां अध्याय, श्लोक संख्या 8। तो मैं इसको उच्चारण करता हूँ, फिर हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। मयैव मन आदस्त्वं मयि बुद्धिं निवेशयः निवसिष्येसि मयैव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अनुमान, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है, अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंग शक्ति भक्त की जिह्वा पर नाचते रहते हैं। जब वो कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त इस उच्चिष्ट को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है। यद्यपि भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई है। तो आप सब परिचित हैं भगवद गीता से। भगवद गीता का जो वर्णन हमें प्राप्त होता है महाभारत में, और महाभारत ऐसा दिव्य ग्रंथ है क्योंकि व्यास देव ने वेद उपनिषद वेदांत सूत्र और कई सारे ग्रंथों की रचना की, जिसे स्मृति जिसे श्रुति कहा जाता है। वेद है, उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र आदि है, इसको श्रुति कहते हैं। श्रुति का मतलब है जो सुनने के द्वारा समझा जाता है जिस नॉलेज को। तो वैदिक सभ्यता में अर्ली डेज में शुरुआत के दिनों में क्या था उन युगों में, कि उन युगों के जो लोग हैं वो बहुत बुद्धिमान थे। एक बार आध्यात्मिक गुरु के मुख से जो भी वाणी निकलती थी, जो श्रोता इतने परिपूर्ण और परफेक्ट थे कि एक बार श्रवण करने मात्र से उनको स्मरण रह जाता था। तो लेकिन जैसे ही सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये युग, द्वापर युग का जब अंत समय आ गया, भगवान कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि विसहा, कृष्ण जब इस जगत को छोड़कर चले गए तो एक प्रकार से सब जगत में अंधकार छा गया, क्योंकि भगवान धर्म ज्ञान आदि, भगवान जब होते हैं तो उनके साथ धर्म निवास करता है, ज्ञान निवास करता है, सब चीजें भगवान के साथ निवास करती हैं। जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले जाते हैं तो वो चीजें भी अपने साथ ले जाते हैं। जिस प्रकार से जब तक सूर्य है तो सब जगह प्रकाश फैलता है, तो सूर्य के अप्रकट हो जाने से सब जगह अंधकार का वातावरण फैलता है। उसी प्रकार से कृष्ण द्वापर युग के अंत में जब ये जगत से चले गए तो एक प्रकार से यहां अंधकार छाया गया। तो फिर कलयुग के जो जीव हैं वो जन्म लेने लगे, और कलयुग के जीवों के पास वो सामर्थ्य नहीं रहा, वो भाग्य नहीं रहा, उस प्रकार की बुद्धि नहीं रही जो पहले युगों के लोगों के पास था। उनके पास लंबी आयु थी, हाँ, याद करने की क्षमता थी, बहुत भाग्य भाग्य उनका उन्नत था। हाँ, तो इस प्रकार से फिर व्यास देव ने क्या किया, कि व्यास देव ने देखा कि कलयुग की शुरुआत हो गई है और कलयुग में लोग मंद बुद्धि मंद भाग्य ही उपद्रता, कलयुग के लोग मंद बुद्धि के हैं, उनके दिमाग में 10 बार बोलते रहो तब उनको समझ में आता है। नहीं, घर में भी व्यक्ति जब पत्नी को कहता है कि ग्लास पानी लेके आओ, एक बार सुनाई नहीं देता, कितनी बार बोलना पड़ता है, कम से कम 3 बार। इसलिए शास्त्र कहते हैं हरे नाम हरे नाम है वह केवलम, 3 बार बोला गया है, क्योंकि कलयुग के लोगों की बुद्धि इतनी निम्न स्तर में है कि उनको एक बार समझने में से बोलने से समझ में आता नहीं है। तो इसलिए व्यास देव ने देखा कि कलयुग के लोग क्या भगवान को समझ सकते हैं, हम वो अपने आप को समझे वो काफी है, अपने आप को ही हम समझना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, तो हम परम भगवान को कैसे समझ सकते हैं जो हमारे भौतिक बुद्धि से परे हैं, जिनको अचिंत्य कहा जाता है, अचिंत्य खलु ये भावा, कि वो अचिंत्य है। हमारे तर्क बुद्धि न्याय शास्त्र आदि के द्वारा भगवान को समझना असंभव है। तो ऐसे व्यास देव ने देखा कि कलयुग के लोग उनके लिए बहुत कठिन है, तो उन्होंने इन ग्रंथों को, ये जो शास्त्र थे, शास्त्र क्या है, भगवान के मुख से निकली हुई वाणी, अपौरुषेय शब्द, भगवान ने जो बोला वो शास्त्र है। कोई कहे कि मैं जो बोल रहा हूं वो शास्त्र है, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अंदर कई प्रकार के दोष है, अपूर्ण इंद्रियां हैं, धोखा देने की प्रवृत्ति है। तो लेकिन जब व्यास देव ने इन शास्त्रों को लिखित रूप प्रकट किया, लिखित रूप में दिया, फिर कलयुग के लोग इन ग्रंथों का बुक फॉर्म को समझने लगे और फिर इसका लाभ उठाने लगे। तो क्यों दिया व्यास देव ने, क्योंकि इस कलयुग के लोग सरलता से भूलते हैं, उनको स्मरण नहीं रहता कोई भी चीज। इसलिए हम जब माँ के गर्भ में थे इतने छोटे से बच्चे के रूप में, अभी हमें याद है कि मैं माँ के गर्भ में भी था कुछ साल पहले, ऐसा याद है किसी को नहीं। तो कलयुग के जीव हमेशा भूलते हैं, और विशेष रूप से कृष्ण को भूलते हैं, और विशेष रूप से भगवान की सेवा भूल जाते हैं। बाकी सब चीजें उनको याद रहती हैं, लेकिन जैसे भगवान भगवत भक्ति भगवत सेवा की बात आती है तो उनको भूल जाते हैं। तो इसलिए व्यास देव ने इन शास्त्रों को लिखित रूप प्रदान किया ताकि कलयुग के जो जड़ बद्ध जीव है उसको समझ सके। फिर उन्होंने जो ग्रंथ दिए है वो वेद थे, ऋग्वेद सर्वप्रथम था, ऋग्वेद के फिर अलग अलग वेद बने, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर उपनिषद, फिर ब्रह्म सूत्र, उसी टीचिंग्स को उन्होंने क्या किया, सूत्र रूप में दे दिया। उससे कई सारे सूत्र थे, उसमें से पहला सूत्र यही था, क्या, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये एक छोटा से शब्द में उन्होंने पूरा सागर भर दिया। अथा तो, अभी टाइम आ गया है, आपका जीवन कुत्ते बिल्ली के समान नहीं है, आपका जीवन मनुष्य का है और इस मनुष्य जीवन में आपको हायर उन्नत इंक्वायरी करनी चाहिए, उन्नत प्रश्न पूछने चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं कौन हूं या परब्रह्म कौन है, भगवान कौन है। और फिर दूसरा सूत्र क्या था, जन्मादर्श यतः, कि वो ब्रह्म कौन है जिनसे सारे जगत की सृष्टि हुई है, जन्म आदि यश यतः, जिनसे सब जगत प्रकट हो गया है। भगवान भगवद गीता में उसी बात को कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है कि मैं आध्यात्मिक जगत और भौतिक ये जो संसार है इसके उत्पत्ति का मूल कारण हूं। जो व्यक्ति जानता है वो बुद्धिमान है और बुद्धिमान व्यक्ति ही मेरी सेवा में लगता है, कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मनुष्यानाम सहस्रेशु, भगवान कहते हैं कि मेरी सेवा में लगना, मेरी भक्ति में लगना ये बहुत दुर्लभ है। हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति मुझे समझने का प्रयास करता है, मेरी सेवा में लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान उस व्यक्ति को महात्मा की उपाधि प्रदान करते हैं जो व्यक्ति बहुत जीवनों के बाद अलग अलग बॉडीज को ग्रहण करने के बाद ये समझ जाता है कि वास्तव में वासुदेव कृष्ण ही परम भगवान है, परम पुरुष है, परम सेवा करने के पात्र है। तो जो व्यक्ति ये समझता है, कृष्ण कहते वो व्यक्ति महात्मा है, वो दुर्लभ है। तो महात्मा कोई उपाधि नहीं है, जन कल्याण का कार्य करने से महात्मा नहीं बनता व्यक्ति, वो तो ऐसे अरे गहरे लोगों ने उपाधि दे दी है एक दूसरे को। जैसे ऊंट होता है ना, जो ऊंट की शादी थी तो गधा गया शादी में, गया और वहां गधा जाकर ऊंट को कहता है अहो रूपम, क्या आपका सुंदर रूप है, आपकी जो पत्नी है दुल्हन जो इतनी सजी धजी है। वहां गधा अपनी सुरीली आवाज में क्या कर रहा है, उसका गुणगान गाते जा रहा है, अहो रूपम क्या रूप है, क्या रूप है। अभी ऊंट कुछ सुंदर है, अभी उसकी पत्नी जितना मर्जी श्रृंगार करे ऊंट की, वो थोड़ी सुंदर लगेगी। अरे ऊंट ने देखा कि अरे ये मेरे प्रशंसा कर रही तो मुझे भी इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा हाँ मधुर है आपका जो ध्वनि है, गधे को कौन प्रशंसा कर रहा है, ऊंट, ऊंट कर रहा है, कह रहा है कि आपके मुख से जो निकला हुआ शब्द है, ध्वनि है या जो गान है वो बहुत सुरीला है, बहुत मधुर है, कानों में इतना आनंद दे रहा है। अभी गधे की आवाज सुन के कोई आनंदित होता है, हम चिल्लाते रहते हैं अरे गधे, एक बार गधा जब आवाज करने लगे तो उसको रोकना बड़ा कठिन होता है। हाँ, सिटी में तो नहीं सुनाई मिलता, शहरों में तो गाड़ियों की आवाज सुनाई मिलती है, सुनाई देती है। तो इसी प्रकार से जो भौतिक जगत के लोग हैं एक दूसरे को महात्मा बनाते रहते हैं, एक दूसरे को उपाधि देते रहते हैं, उनकी स्थिति गधे के समान ही है और ऊंट के समान है। लेकिन भगवान कहते हैं कि वास्तव में महात्मा कौन है जो मेरी सेवा में लगता है। तो इस प्रकार से जो व्यास देव ने ये जो श्रुति शास्त्र है वो प्रदान किए, जिसको श्रवण करने के द्वारा समझा जाता है, श्रुति शास्त्र, जिसमें कहा जा गया है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए श्रुति शास्त्र में। और फिर उसके बाद स्मृति शास्त्र है। हाँ, स्मृति शास्त्र क्या है, पुराण है, इतिहास, इतिहास में महाभारत और रामायण, ये इतिहास है, तो इसको स्मृति शास्त्र कहते हैं। फिर श्रुति शास्त्र कहता है कि व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास ह्यूमन फॉर्म है उसको क्या करना चाहिए। और फिर जो स्मृति शास्त्र है, पुराण आदि है, इतिहास महाभारत रामायण है, ये सिखाता है व्यक्ति को कैसे करना चाहिए, कैसे करने चाहिए एक्टिविटीज। हाँ ठीक है, हमने मनुष्य जीवन लिया, व्यक्ति को भगवत सेवा करनी चाहिए, अपने जीवन के परम लक्ष्य को जानना चाहिए, जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि जो भया हुआ है जिसको आप नहीं चाहते उससे मुक्त होने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो फिर कैसे करें, तो वो चीजें कौन हमें प्रैक्टिकली सिखाती है, स्मृति शास्त्र। स्मृति मत कहते ना, मेरे स्मृति में वो था, मतलब याद। तो जो घटनाएं बीती हैं उनको लिखित रूप में व्यास देव ने दिया, उसको पुराण कहते हैं। तो पुराणों में ऐसे ऐसे महान भक्तों का वर्णन है, भगवान के साथ उन्होंने किस प्रकार से सेवा की, उन्होंने अपने जीवन को कैसे धन्य बनाया या सक्सेस बनाया, सफल बनाया, उसका वर्णन पुराणों में हमें प्राप्त होता है। और उसके बाद जो है वो न्याय शास्त्र, न्याय शास्त्र कोई कह सकता कि क्यों करना है, मंदिर क्यों जाना चाहिए मुझे, है ना। हमारे पास बहुत प्रश्न होते हैं, कलयुग के लोगों के पास प्रश्न ही नहीं है, उनके पास तो ऐसे प्रश्न है जिनका कोई अर्थ अर्थहीन प्रश्न है। तो वास्तव में जब ये शास्त्र है फिर हमें कहते हैं कि फिर क्यों, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि आपको हमेशा क्या करना चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन मिला ही उसी के लिए है, प्रश्न पूछने के लिए है। और जब हम प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्नों के उत्तर कहां से प्राप्त करने चाहिए, तो भगवान भगवद गीता में 14वें अध्याय में कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तब आपको क्या करना होगा, सर्च करो, आप अपने जीवन में एक व्यक्ति की व्यक्ति को सर्च करो जो वास्तव में भगवत तत्व ज्ञान को जानता है, उचित रूप से जानता है। और ऐसे तत्वविद हम व्यक्ति को, व्यक्ति के पास जाओ और उससे जिज्ञासा करो, उसको प्रश्न पूछो। हाँ, तो इसलिए शास्त्र हमें हमेशा तत्पर या हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को ये जो भगवत ज्ञान है उसको अनुकूल करना चाहिए। तो जो महाभारत है उसमें तो किसी को लगता है, जनरली लोग कहते हैं कि भगवत गीता या महाभारत घर में रखने से लड़ाई झगड़े होते हैं, बल्कि महाभारत और भगवत गीता आने से लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं। ये सब आने से पहले लोगों के जीवन में इतना उत्पात है, इतना कष्ट है, इतनी विपदा है। तो जिस महाभारत की रचना व्यासदेव ने बहुत आखिरी में की, उन्होंने देखा कि कलयुग के जीवों को भगवान के जो सिद्धांत है उसको समझना बहुत कठिन है। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने महाभारत की रचना की और महाभारत में उन्होंने एक अमूल्य रत्न को छुपा के रखा। कौन सा है वो अमूल्य रत्न, भगवत गीता है। भीष्म पर्व में भगवत गीता का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ये जो 700 श्लोकाज है भगवत गीता के, ये कोई अलग से नहीं है, महाभारत के अंदर ही जब भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य उपदेश प्रदान करते हैं तो उस उपदेशों को ही भगवत गीता कही जाती है। तो इसलिए व्यक्ति को क्या करना है कि भगवत गीता को समझने के लिए, अपने जीवन में भगवत गीता को उतरने के लिए हमें एक जो तत्वविद व्यक्ति है, आदर्श व्यक्ति है जिसने वास्तव में भगवत ज्ञान को जाना है या जो अपने जीवन में भगवत ज्ञान को प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए और उसके पास जाकर क्या करना चाहिए, तद विधि प्रणिपातेन भगवत ज्ञान या भगवान के बारे में सीखने के लिए भी प्रोसेस है, जैसे स्कूल शादी में भी प्रोसेस है, भगवान के लिए विधि है। तद विधि, विधि क्या है, प्रणिपातेन, प्रणिपातेन का मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा, प्रकृष्ट रूपेण निपात, शरणागत होना होगा, सरेंडर। जैसे हम नाई के पास जाते हैं बाल काटने के लिए, उसके उसके हाथ में अपना सर दे देते हैं, कितना विश्वास कि इसने वस्तुरा, क्या कहते हैं उसको, हाँ, रेजर अपने हाथ में रखा है, वो गला नहीं काटेगा, कितना विश्वास है कि नहीं, कितना फेथ है। हम इस भौतिक जगत में भी कोई चीज के लिए किसी पर इतना फेथ रखते हैं, तो क्यों नहीं हम भगवत ज्ञान को सीखने के लिए, अपने जीवन में धारण करने के लिए क्यों हम विश्वास नहीं रखते। हाँ, तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि आप जाओ भक्तों के पास और क्या करो, प्रणिपात, प्रकृष्ट रूपेण निपात, सरेंडर हो जाओ और उसे सीखने का प्रयास करो। जैसे भगवत गीता के शुरुआत में अर्जुन इतना ऊंची ऊंची बातें कर रहा था, अर्जुन को लग रहा था कि मेरे जैसा पढ़ा लिखा विद्वान हाँ इस संसार में कोई है नहीं, मैं कहां से पीएचडी करके आया हूं, इतने सारे शस्त्र अस्त्र का ज्ञान मैं रखता हूं, द्रोणाचार्य का उत्तम डिसाइपल हूं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा विजेता धनुर्धारी अर्जुन हूं, गांडीव जो मेरा धनुष है। तो इस प्रकार से इतना उसको घमंड था अर्जुन को एक प्रकार से, और अपने विद्या अपने नॉलेज का गर्व था। लेकिन जब वो संकट में आ गया, परेशानी में आ गया अर्जुन के पास, उसका जो भौतिक ज्ञान है वो काम में नहीं आया। रोने लगा अर्जुन रथ के ऊपर, इतना धनुर्धारी पूरे विश्व का राजा सबके सामने रो रहा है। अब सोचो कितनी उसकी दयनीय स्थिति होगी। और रोते हुए चिल्लाते हुए वो अपना गांडीव जो धनुष है उसको छोड़ देता है रथ के ऊपर और कहता है कि हे कृष्णा अब मुझसे युद्ध नहीं होगा, अभी नहीं करूंगा मैं युद्ध। तो फिर भगवान खड़े हो जाते हैं और भगवान कहते हैं कि अरे अर्जुन तुम तो बड़े बुद्धिमान की तरह बातें करते हो, दिखाते हो कि तुम भी कुछ तो जानते हो। क्योंकि संसार में कलयुग के जीवों के अंदर एक चीज है, उनकी स्थिति उस मेंढक के तरह है जो कुएं में रहता है। और कुएं में रहते रहते मेंढक को लगता है कि मुझे सब चीजों का ज्ञान है, मैं सब, मेरा जो कुआ है उससे बढ़कर संसार है नहीं, उससे बढ़कर कोई जगत नहीं, उससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। इस भावना से वो मेंढक उस कुएं के अंदर जीता है, समझता है। लेकिन दूसरे जगत से कोई मेंढक आता है अटलांटिक महासागर से या प्रशांत महासागर से, तो वो उसको बताता है। प्रभुपाद कहते हैं वो कुएं वाला मेंढक पूछता कि सर आप कहां से आए हो, वो कहता है मैं ना पैसिफिक ओशन से आया हूँ। ये क्या होता है, कितना बड़ा है? तो मेंढक कहते बहुत बड़ा है। कहता अपने आप को फुलाता है, कहते इतना बड़ा है इस कुएं, इतना बड़ा है। ऐसे बोलते बोलते वो जो कुएं का मेंढक है वो यदि कितनी भी अपनी बुद्धि को दौड़ाए, कितना भी लंबा सोचे, तो भी वो एक सागर के भांति या सागर के बारे में समझ नहीं सकता ना सोच सकता है। तो उसी प्रकार से हम भी अपने छोटे से कुएं में रह के हमेशा सोचते हैं कि मुझे ही सर्वाधिक ज्ञान है, इससे परे कुछ नहीं है। हाँ, तो हमारी स्थिति उस मेंढक के समान है। अर्जुन की भी वही थी, लेकिन अर्जुन ने देखा अभी असंभव है इस कष्टमय स्थिति से बाहर निकलना। तो अर्जुन भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करता है। अर्जुन कहता है कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश यशानिच्छितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमान त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्ते हम, हे कृष्णा मैं बहुत दुखमय स्थिति में हूं। हाँ, तो मुझे अभी पता नहीं चल रहा है कि मेरे जीवन में मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, मेरे लिए जो उत्तम है, मेरे लिए जो श्रेयस्कर है, ऐसा उपदेश आप मुझे प्रदान कीजिए। क्योंकि मैं मूर्ख हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं आपके शरणागत हो रहा हूं। हाँ, जब सरेंडर हो जाता है, नाई के सामने आप सर नीचे करोगे, सरेंडर का मतलब क्या, सर अंडर करना, सर को नीचे करोगे तो क्या हो जाएगा, नाई फिर से आपका ठीक से हेडशेव कर सकता है। तो उसी प्रकार से अर्जुन भी भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है और शरणागत होकर फिर क्या करते हैं कृष्णा, उनको उपदेश प्रदान करते हैं। क्योंकि सीखने के लिए हमें क्या करना होगा, एक जो सिखाता है वो ऊंचे स्थान में होता है और दूसरे क्या होते हैं नीचे। अभी हम सीखना चाहते हैं लेकिन जो सिखा रहा है उससे ऊपर बैठना चाहते हैं, तो कैसे सीखेंगे? आप पानी किसी को देना है, आप किसी को दान देते हो, भिक्षा देते हो, तो एक याचक होता है और एक दाता होता है। तो वो याचक की भावना, एक भिखारी की भावना को हमें धारण करना होगा। और अर्जुन ने वही किया नॉलेज को प्राप्त करने के लिए। विद्या विनय संपन्ने, नॉलेज बना रहता है जब हमारे पास क्या हो, विनम्रता हो, तब हम ज्ञान का जो स्रोत है हमारे हृदय में स्थित हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रणिपाते ना, और दूसरी चीज क्या है, परिप्रश्न, व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत जीवन में आलसी नहीं होना चाहिए, हमेशा अधिक से अधिक जानने के लिए तत्पर रहना चाहिए। मोर एंड मोर इंक्वायरीज, हाँ प्रभुपाद कहते हैं, और अधिक जानने का प्रयास करो। जितना अधिक आप भगवान के बारे में जानोगे, जितना अधिक भगवान की महानता के ग्रेटनेस के बारे में जानोगे, उतने ही अधिक आप भगवान के प्रति सरेंडर हो जाओगे, उतने अधिक कृष्ण के प्रति आप अटैच्ड होते जाओगे, आसक्त होते जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा कि कृष्ण विभु है, हाँ, और मैं क्या हूं, अनु। विभु मीन्स बड़ा और अनु मीन्स छोटा। तो भगवान ग्रेट है, भगवान महान है और मैं छोटा हूं। इस भावना को हम रियलाइज करेंगे, अनुभव करेंगे और फिर देखेंगे भगवान की महानता को, और फिर भगवान के प्रति हमारे हृदय में जो प्रेम का संबंध है वो जागृत हो जाएगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि आपको सबसे पहले प्रणिपात करना होगा, सरेंडर होना होगा, और उसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, उस व्यक्ति को प्रश्न पूछने होंगे। परे प्रश्ने न, प्रश्न करो। अर्जुन ने भी कितने सारे प्रश्न किए। भगवान ने कहा कि मैंने ये गीता तो पहले विवस्वान को कई करोड़ों साल पहले सुनाए थे। भगवान क्या बोल रहे हो आप, मुझे हंसी आ रही है। आप और हम एक साथ ही तो बचपन से खेलते आ रहे हैं, कूदते आ रहे हैं, आप हस्तिनापुर आते रहते हो, ऐसे कैसे हो सकता है करोड़ों साल पहले आपने गीता का उपदेश दिया, क्या मैं नहीं था क्या उस समय। भगवान कहते हैं बहुनी मैं वेति तानी जन्मानी तम अर्जुन, तान्य हम वेद सर्वानी नाहम तो हम परंतप। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे कई सारे जन्म बीते हैं लेकिन मैं उन सबको याद रखता हूं, लेकिन तुम्हें याद नहीं है और वास्तव में नहीं आ। यही तो अंतर है एक बद्ध जीव में और भगवान में। भगवान कहते मैं भूत वर्तमान और भविष्य का ज्ञाता हूं, सबको जानता हूं, लेकिन हम कल पूछा जाए क्या ब्रेकफास्ट किया तो हम सोचते रहेंगे, है कि नहीं। आजकल तो इतने गैजेट्स आ गए हैं कि हम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करनी है या प्लानर्स है, कितनी सारी चीजें व्यक्ति को रखनी पड़ रही है। इससे पता चलता है कि मंद बुद्धि बढ़ती जा रही है और हम सोचते हैं कि हम मॉडर्न लाइफ में हमने एडवांसमेंट की है, हम उन्नति करते जा रहे हैं, तरक्की करते जा रहे हैं, लेकिन वैसे देखा जाए हमारी बुद्धि, हमारी आयु, हमारी स्ट्रेंथ, हमारे अंदर जो टॉलरेंस आदि है, ये सब कम होते जा रहा है। और लोगों का जो जीवन है बहुत पशुवत हो रहा है, कष्टमय हो रहा है। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न पूछने चाहिए हमेशा आध्यात्मिक जीवन में अधिक से अधिक जानने के लिए। और तीसरी चीज क्या है, सेवया। प्रणिपाते न परे प्रश्ने न सेवया। व्यक्ति को सेवा करनी चाहिए उस आचार्य की, उस व्यक्ति की, उस भगवान के जो भक्त है, गुरु है, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो क्या होगा फिर, जो दिव्य ज्ञान है हृदय प्रकाशित, तब ये आध्यात्मिक ज्ञान को समझना बहुत सरल हो जाएगा। ये जो तीन प्रकार का ये जो प्रोसेस है इसको हम पालन करते हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान हमारे लिए बहुत चुटकी के समान, बहुत सरलता से हमारे लिए समझ में आएगा हमें। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ऐसे तत्वविद गुरु या आचार्य या भक्त के शरण ग्रहण करनी चाहिए और हम भगवत ज्ञान को समझ सकते हैं, अनुकूल कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे जो भक्त है या जो आचार्य है या गुरु है या तत्वविद व्यक्ति है जो भगवान को जानता है, उनका कंट्रीब्यूशन इस जगत के लिए बहुत बड़ा है। क्या है उनका कंट्रीब्यूशन, कि उन्होंने इस दिव्य ज्ञान को सारे जगत को एक तो प्रदान कर रहे हैं और दूसरा उसको प्रैक्टिस करने के लिए एक प्रकार का जो समाज है उसको वो निर्माण करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद है, प्रभुपाद ने इस ज्ञान को पूरे विश्व में वितरित किया और उसके साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, मंदिरों का निर्माण किया। लोग कहते मंदिर क्यों बनाने चाहिए, लेकिन वो कसाई खाने बनाने के लिए तत्पर है। मंदिर बनाने की बात आती है, कोई कंस्ट्रक्शन की बात आती है, टेम्पल कंस्ट्रक्शन, तो उसपे उनको हजारों बहाने होते हैं। बल्कि मंदिर कोई बिल्डिंग नहीं है। लोगों को जनरली लगता है कि मंदिर जाना, और आजकल के जो मंदिर है वो उसको कहा जाता है बेल रिंगिंग टेम्पल्स, केवल घंटी बजाने वाले मंदिर रह गए अभी कलियुगा में, उसमें मंदिर का कार्य हो नहीं रहा है। लोगों को लगता है कि मंदिर जाना माथा नीचे झुका के और वहां का जो पुजारी है उसके हाथ में 50-100 रुपए पकड़ के आ जाना, बस यही है मंदिर जाना और यही है भगवान को जानना, यही है भगवान की सेवा, ये सब नहीं है, इससे परे है। हाँ, टेम्पल क्या है, इससे परे है। आजकल के लोग सोचते हैं कि इतना ही बस टेम्पल, हम तो रोज जाते हैं मंदिर, जन्माष्टमी के दिन जाते, और जाते तो करते क्या है, जाते थोड़ा माथा, आजकल तो झुकता भी नहीं व्यक्ति, झुकना भी उसके लिए भगवान के सामने क्या हो गया है, कठिन हो गया है। तो लेकिन व्यक्ति जाता है और बस थोड़ा सा हाथ जोड़कर और कुछ अपनी जो मन्नतें हैं, डिमांड्स भगवान के सामने रख देता है, सारे प्रॉब्लम बताता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो स्ट्रगल है, वो प्रॉब्लम चल रहा है, आप कुछ करो भगवान, अभी कुछ अभी फिर गया, इस प्रॉब्लम से मुक्त हो जाऊं, कब तक मैं टेंशन भरा जीवन जीता रहूं, रोता है, चिल्लाता है, प्रार्थना करता है और वापस आ जाता है, लेकिन वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, भगवान को जानना नहीं चाहता। हाँ, तो वास्तव में मंदिर क्यों बनाए गए हैं? भगवत ज्ञान को समझने के लिए। हाँ, तो इसलिए टेम्पल्स, जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मंदिर क्या है, मंदिर तो वास्तव में हॉस्पिटल्स है। हाँ, प्रभुपाद कहते कि मैंने जो इस्कॉन मंदिर बनाए हैं वो सर्वसाधारण मंदिरों के समान नहीं है, ये जो इस्कॉन मंदिर है ये यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हाँ, विद्यालय के समान है, जहां जाकर आप क्या करोगे, आपने जीवन के मूल्यों के बारे में सीखोगे कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं, क्यों मुझे मंदिर जाना चाहिए, कृष्ण ही भगवान क्यों है, किस प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए, भौतिक जगत में नाना प्रकार के कष्ट क्यों है, मैं इनसे कैसे मुक्त हो जाऊं, ये हजारों हजारों चीजों के बारे में सीखने के लिए, समझने के लिए, प्रैक्टिस में डालने के लिए प्रभुपाद ने ये जो मंदिर बनाए हैं। और ये मंदिर वास्तव में, जैसे मैंने कहा कि ये आध्यात्मिक हॉस्पिटल है, क्योंकि कब हम समझे कि मंदिर जाना मेरा सफल हो गया, या फिर कोई व्यक्ति कब समझे कि हॉस्पिटल में जाना मेरा सफल हो गया, सक्सेस हो गया, कि हाँ मैं बीमार हो गया हूं तो हॉस्पिटल में गया और सफलता मुझे प्राप्त हुई, या ठीक होकर वापस आ गया। हाँ, जैसे हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो सबसे पहले यह होना चाहिए कि डायग्नोज, कि आपको बीमारी क्या है, उसका पता चल जाना चाहिए। डायग्नोज ठीक से नहीं हो रहा है तो फिर आगे की चीजें कैसे उचित रूप से हो सकती हैं? और दूसरी चीज क्या है कि आपके बीमारी का कारण क्या है। हॉस्पिटल जाते तो सबसे पहले डायग्नोज होना चाहिए, फिर पता चलना चाहिए कि आपके बीमारी का कारण क्या है, और तीसरी चीज आपको पता चलनी चाहिए कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, कि आपकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, एक दिन ये होगा, दूसरे दिन ऑपरेशन होगा, तीसरे दिन ना सिक्वेंस ट्रीटमेंट पता होनी चाहिए, और चौथी चीज क्या है कि आपके हाथ में प्रॉपर मेडिसिन होनी चाहिए, तब आप क्या हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। हाँ, तो ये वास्तव में सफलता है हॉस्पिटल में जाने की। तो उसी प्रकार से मंदिर है, मंदिर जाने की सफलता कब है, जब आपको पता चले कि आपकी बीमारी क्या है। हाँ, बीमारी क्या है हमारी, ये शरीर ही हमारी वास्तव में प्रॉब्लम है, या जैसे शास्त्र कहते हैं शरीरम व्याधि मंदिरम, क्या है शरीर, व्याधियों का मंदिर है। हमें लगता है ये शरीर इतना एंजॉय देने वाला वस्तु है, हाँ, लेकिन यदि हम कितना भी प्रयास करें, आप सोचो इस उंगली को आप कितना आनंद दे सकते हो, पूरे दिन ट्राई करो, सारी चीजें इसको दे दो, टोपी पहना दो, उसको कलर करो, इसको खिलाओ, गर्म पानी में डाल दो, ठंड चल रही है, जितना मर्जी आनंद दो, दिन में कितना आनंद दे सकते हो आप, बहुत कम। और इसको दुख देने की बात सोचो, कितनी प्रकार से इसको दुख दे सकते हो, अनलिमिटेड हजारों चीजें हैं। इसको दरवाजे के बीच में रख दो, दरवाजा बंद कर दो जोर से, हाँ, और कितने सारे स्ट्रगल है। तो फिर देखा जाए ये शरीर हमें आनंद देता नहीं है, अधिक आनंद नहीं देता, अधिक क्या दे रहा है, केवल दुख दे रहा है। इसलिए वास्तव में शरीर के प्रति वैराग्य आना चाहिए, इसलिए आध्यात्मिक नॉलेज है। हाँ, जो नॉर्थ इंडिया में 2000-2500 पहले, 2000 साल पहले, हाँ, जो गौतम बुद्ध हुए थे, सिद्धार्थ प्रिंस थे, उनके पिता को पता चला, उन्होंने 8 राजकुमारों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और बताया, अभी तो अभी मेरे बच्चे ने जन्म लिया है, जरा इसका भविष्य बताइए। 7 ब्राह्मणों ने कहा कि ये जो बालक है, हाँ, ये या तो महान ग्रेट साधु बनेगा या महान राजा बनेगा, लेकिन 8वां जो ब्राह्मण था उन्होंने कहा ये तो महान साधु बनेगा और पूरे विश्व में विप्लव ला देगा। और कारण क्या होगा, इसको 4 चीजें इसके दृष्टि में नहीं आने चाहिए, इसको बुढ़ापा नजर नहीं आना चाहिए, इसको बीमारी नजर नहीं आनी चाहिए, इसको मृत्यु नजर नहीं आनी चाहिए, कोई मरा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, और कोई साधु नजर नहीं आना चाहिए। ये 4 नजर आ गए, इसलिए बुद्धिज्म में ये 4 साइट्स है, 4 दृष्टि है, ये सिद्धांत प्रिंसिपल है, ये 4 साइट्स। तो राजा, उसके पिता ने बहुत बड़ा महल बनाया, इतना आवा ढंग कि उनका जो सिद्धार्थ राजकुमार अंदर ही रहे, 16 साल या 12 साल की आयु में उनका विवाह हुआ और फिर उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। तो ऐसे बहुत साल बीते और फिर एक दिन जब वो बाहर निकले अपने जो सारथी थे, उनका नाम मैं भूल गया, सारथी के साथ वो निकले, तो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति डंडा लेकर जा रहा है, बहुत कष्ट में है और चिल्ला रहा है, शरीर में सारी लाइंस पड़ी हुई है, बुढ़ापा है, चमड़ी ऐसी निकल रही है, साइड में लटक रही है, बाल खत्म हो रहे सर के, चला नहीं जा रहा है। तो उसने पूछा कि ये कौन है? उन्होंने कहा इसको क्या कहते हैं? बुढ़ापा। राजकुमार ने पूछा कि मुझे भी आएगा? उनका सारथी कहते हैं आपको भी आने वाला। अरे मुझे भी आएगा, पहली बार देखा उन्होंने, उनकी आयु लगभग 30 साल की हो गई थी, पहली बार बूढ़े व्यक्ति को देखा। और फिर जब आगे गए तो देखा कि एक व्यक्ति को 4 लोग लेके जा रहे हैं और बाकी सब लोग, कुछ लोग रो रहे हैं और कुछ कह रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वास्तव में तभी हमें भगवान राम के नाम की याद आती है। लेकिन जो मरा हुआ व्यक्ति है ना, वो कहता है ये मेरे लिए सत्य नहीं, अभी तो मैं बोल ही नहीं सकता, इसलिए गर्दन हिलाते रहते हैं ना जब ले जाओगे, तो नहीं नहीं आपके लिए है, मेरे लिए नहीं, ऐसी स्थिति है। तो उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है, बहुत लोग दुखी है, रो रहे हैं। उन्होंने कहा इसको कहते हैं मृत्यु, लाइफ का ट्रुथ एंड है, फुल स्टॉप। तो उन्होंने कहा ये मुझे भी आएगा क्या? उन्होंने कहा हाँ आपको भी आने वाला है। फिर और दुखी हो गए। फिर आगे आगे जाकर उन्होंने देखा कोई बीमार है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। तो फिर उन्होंने कहा ये बीमारी आपको भी आने वाली है। फिर फाइनली चौथी चीज उन्होंने देखी, एक साधु को देखा, उसका तेजवान चेहरा, खुश है, शांत है, दिव्य ज्ञान से भरा हुआ है, इस संसार से अनासक्त है। उन्होंने देखा अरे ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये वो व्यक्ति है जिसने इन चीजों को लांग लिया है, मतलब पार किया है, इन जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी आदि से वो भयभीत नहीं है, उससे परे है, क्योंकि वो जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हो जो पंच महाभूतों से बना हुआ है और जो फाइनली एंड होने वाला है। हाँ, तो वो दिव्य भगवत प्रेम से मग्न है, इसलिए गीता के श्लोक में भगवान कहते हैं मय्यावेश्य मनोये माम, मय्येव मनाधस्तो मयि बुद्धि निवेशे निवेशया निवसिशेषि मय्येव अतः उद्भवन संशया। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में वास करोगे। तो वो जो साधु है वो वास्तव में भगवान में निवास करता है, क्योंकि उसका मन, उसका चित्त, उसका हृदय, उसके विचार, उसके प्लानिंग सब कृष्ण की सेवा के लिए है, कृष्ण के स्मरण के लिए है। तो फिर सिद्धार्थ हम वापस आ जाते हैं वो राजकुमार, और आकर फिर अपने निकल जाते हैं वहां से बाहर। अब आगे चलकर हम जानते हैं बोध गया, गया में महान गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जगत वास्तव में हमें ये सिखाता है कि हम ये जगत के प्राणी नहीं है। इसलिए ये जो समस्या क्या है, सबसे पहले तो ये शरीर ही एक बहुत बड़ी समस्या है, ये शरीर ही हमारी असली बीमारी है। और इस बीमारी का कारण क्या, ये शरीर धारण करने का कारण क्या है, क्यों हमने ऐसा मिजरेबल बॉडी धारण किया है, क्यों? क्योंकि गीता में कृष्ण कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। हे भारत अर्जुन, भरत वंशी अर्जुन, क्योंकि ये जो जीव है ये मुझसे ईर्ष्या करता है, मुझसे द्वेष करना ये उसके बीमारी का कारण है। भगवान से ईर्ष्या करना, भगवान से द्वेष करना, भगवान को अपने जीवन से दूर रखना, ये उसके मिजरेबल सिचुएशन का प्रमुख कारण है, कष्टमय स्थिति का प्रमुख कारण है। हाँ, तीसरी चीज क्या है, फिर इससे ट्रीटमेंट क्या है, इस बीमारी से मुक्त होने की ट्रीटमेंट क्या है? तो गीता के आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। भगवान कहते हैं ये ट्रीटमेंट है कि इस भौतिक जगत के भौतिक धर्मों को त्याग दो और यह अर्जुन मेरी शरण ग्रहण करो। हाँ, मैं तुम्हें सारे पापों से मैं मुक्त कराऊंगा, बचाऊंगा। भगवान कहते मां शुच, डरो मत, भगवान को पता था। कुछ लोग भगवान की भक्ति में लगते ना, उससे पहले बहुत सोचते रहते हैं हर एक क्लास में जाओ कि नहीं, जो प्रेरणा धाम में हाँ ज्यादा जाते रहूंगा तो फिर जप करना पड़ेगा, है ना, तिलक लगाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, भक्त बन जाऊंगा, भयभीत है हम। भगवान कहते अरे डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन हम सोचते नहीं नहीं, भगवान क्या, मैं अपनी रक्षा करने के लिए तत्पर हूं। चाहे हम दुनिया के राजा बने या सम्राट बने, फरीदाबाद के जो मर्जी बने, आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्र कहते हैं राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। कृष्ण यदि किसी को मारना चाहते हैं, इस जगत में कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो उसको बचाए, और कृष्ण यदि किसी की रक्षा करना चाहे तो इस संसार में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है जो उसको मार सके या उसका बाल बांका कर सके। हाँ, जैसे हम महाभारत में पढ़ते हैं अर्जुन, अर्जुन की कितनी रक्षा की है भगवान, आप सोचो, इतने सारे हजारों हजारों सेना, बड़े बड़े महायोद्धा, रथी महारथी अथिरथि, बड़े बड़े जो योद्धा थे, हाँ, उस अर्जुन के सामने खत्म हो गए, क्योंकि उनके पास कौन थे, कृष्ण थे। कृष्ण हमेशा उनको बचाते थे। जब कर्ण ने अपना धनुष उठाया और कर्ण ने अपना बाण डाला, उन्होंने एक बाण लगाया और बाण छोड़ा उनके ऊपर, तो जिसको कहते सूर्यमुखी बाण, जिसमें एक सांप बैठा हुआ था जो तक्षक का पुत्र था, क्योंकि खांडव वन को जलाया था तो उस समय अर्जुन के, अर्जुन ने जलाया था तो उसके बदले में बहुत गुस्सा था, वो अर्जुन को मारना चाहता था उस तक्षक सांप का जो पुत्र है, दूसरा महान सर्प। तो उन्होंने कर्ण की शरण ग्रहण किए और कर्ण का जो तरकस है जिसमें बाण रखते हैं उसमें बैठ गया, और कर्ण को कहा जब आप ये सूर्यमुखी बाण छोड़ोगे उसमें मैं लिपट जाऊंगा और उसको मैं वध कर दूंगा अर्जुन का। तो इसको कौन जानते हैं, कौन जानते हैं, कृष्ण। उनको पता है कि अभी वो बाण आ रहा है जिसमें वो महान भयावह सर्प है, और अर्जुन का स्पर्श होते ही वो खत्म हो सकते हैं अर्जुन। जैसे कर्ण का वो बाण आया, कृष्ण ने तुरंत अपने पांव उठाया, रथ के ऊपर पाद प्रहार किया जोर से, उससे वो रथ नीचे धस गया और उनका मुकुट को लग के वो बाण छुड़ा गया। तो हम सोचे, बल्कि महाभारत में और कई सारे उदाहरण है, जब जयद्रथ था, है ना, जयद्रथ के बारे में हम देखते हैं, जो जयद्रथ है उन्होंने कहा, क्योंकि इन्होंने तो प्रतिज्ञा ली थी अर्जुन ने, आज जयद्रथ का वध करूंगा सूर्यास्त होने से पहले, और यदि मैं नहीं मारूंगा सूर्यास्त होने से पहले तो मैं स्वयं ही आपने आपको आग में जला दूंगा, चिता के द्वारा चिता में भस्म हो जाऊंगा। अभी भगवान को अपने भक्तों की ज्यादा चिंता है। भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में, हे अर्जुन, नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। भगवान होते हुए भगवान के सामने कैसे उनके भक्त का नाश हो सकता है। तो उस समय जब, और ये जयद्रथ पूरे दिन जो महान जो सेना थी या महान योद्धा थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, सुयोधन, दुर्योधन, दुशासन आदि बड़े बड़े, उनके बीच में वो था वो संध्या समय तक। और अर्जुन ने तो आज व्रत ले रखा था, मारूंगा, क्योंकि क्षत्रिय अपने वचन को निभाते हैं, वचन उनके लिए जीवन से भी बढ़कर होता है। इस संसार में आजकल वचन जितने मर्जी बोलते रहो, गीता पर अभी हाथ रखेंगे, मैं जो भी कह रहा हूं सच कहूंगा और फिर झूठ के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, तो इस प्रकार की स्थिति है। लेकिन अर्जुन ने जो बोला तो वो करना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो बोला है वो करना होगा। हम सब भी भगवान को वचन देके आए हैं। श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में वर्णन आता है कि हम सब माँ के गर्भ में थे और वहां इतने अंधेरे स्थान में ऐसे बैठे हुए थे, दोनों पांव ऐसे पकड़ के, जैसे हम रजाई के अंदर बैठते ना अभी ठंड के दिनों में, पूरा अपने आप को सिकुड़ लेते हो, क्लोज कर देते हो हाथ पांव शरीर बॉडी, तो ऐसे बैठते हैं और वहां चिल्लाते, कृष्णा आप मुझे यहां से बाहर निकालो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और बहुत सारा कष्ट हो रहा है, जलन हो रही है, परेशानी, कीड़े काट रहे हैं मेरे छोटे सॉफ्ट जो चमड़ी है, माँ के गर्भ के अंदर कितने कीड़े होते हैं और कितनी गर्मी है, चलन है, कष्ट है, अंधेरा है। कृष्ण को प्रार्थना करते, कृष्णा प्लीज मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, और जैसे बाहर निकलूंगा आपका भक्ति करूंगा, भक्ति के अलावा कुछ नहीं करूंगा, फिर सच बोलूंगा और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। तो बाहर आते ही हम इतना बड़ा प्रॉमिस लेके आए भगवान को, और वो प्रॉमिस को हम भूल गए आने के बाद, फिर इस जगत में सारे संसार को अलग अलग प्रॉमिस देते रहते, वास्तव में धोखा दे रहे सबको एक दूसरे को, तो फिर हम इस प्रॉमिस को नहीं निभाते। तो अर्जुन ने फिर जब बहुत समय हो गया, कृष्ण ने देखा अरे अर्जुन अभी वास्तव में सूर्यास्त होने जा रहा है, और ये ऐसे वैसे ये जयद्रथ जान बुझ के सारी सेनाओं के बीच में है। तो अर्जुन कहता है कृष्णा आप ही कुछ कर सकते हैं। तो भगवान ने क्या किया, सूर्य, क्योंकि भगवान कहते हैं वातो भति मद भया, कि ये जो हवा है वायु है मेरे भय से बहती है, सूर्य मेरे भय से उदित होता है और अस्त होता है। कौन सूर्य को बोलता है कि अरे टाइम टाइम में उदित हो जाना, लेट मत हो जाना, हाँ कौन है उसके पीछे। भगवान कहते हैं ये जो सागर है अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, उससे मेरा भय है। हाँ इतना देखो, सागर कभी आता है ये कि 1 किलोमीटर बाहर आ गया समंदर, ऐसे है नहीं, सागर अपनी सीमा को नहीं लांघता है, कभी कभी आ जाता है सुनामी के रूप में, जब पाप में बहुत बढ़ता है, गो हत्या विशेष रूप से बहुत होती है, तो ये जो सुनामी है, डिफरेंट वॉल्केनोज है, हाँ ये सारी चीजें आती है, प्रकृति देती रहती है, जब काऊ किलिंग, व्यभिचार, मांस भक्षण, हाँ ये सब चीजें बढ़ती है पाप कार्य समाज में, तो ये सब नेचुरल जो डिफिकल्टीज है वो आती है प्रकृति के दौरान। तो जब भगवान ने कहा कि ठीक है, तो फिर भगवान सूर्य को आदेश देते हैं, और बल्कि बहुत दोपहर का ही समय था, एक प्रकार से दोपहर के थोड़ा सा बाद, तो भगवान ने ऐसा वातावरण प्रकट किया कि जैसे कि अंधेरा हो रहा है, और जैसे अंधेरा होने लगा, सारे बादल आ गए, अंधेरा छा गया, तो जो कौरवों की सेना थी वो नगाड़े बजाने लगे, नाचने लगे, चिल्लाने लगे, और इनको उठा के नाचने लगे, किसको, जयद्रथ को कंधे में, हाँ जैसे कोई पॉलिटिशियन को कोई जीतता है तो उसको भी उठा के लोग नाचते रहते हैं, तो वैसे ही जयद्रथ को उठा के नाच रहे थे, और फिर देखा सब लोग भूल गए, और किसी ने सूर्य को नहीं देखा, सूर्य के ऊपर आकाश की ओर नहीं देख रहा था, एक ही व्यक्ति बार बार पूरे दिन में देख रहा था, वो था जयद्रथ, उसको इतना भय है, क्योंकि अर्जुन ने जो बोला है वो करने का उसके पास सामर्थ्य है, क्यों, क्योंकि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयो, वहां क्या है, जहां कृष्ण है, जहां अर्जुन है, वहां ऐश्वर्य है और विजय निश्चित है। हम इस प्रकार से फिर भगवान जब ये अंधेरा करते हैं तो ये बहुत खुश थी सारे सेना। फिर भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन तुम्हें इतना सामर्थ्य है, इस संसार में तुम कुछ भी कर सकते हो, बहुत पावरफुल तुम से ये हो, धनुर्धर हो, देखो अभी ये सही मौका है, अभी मैंने सूर्य को ढका हुआ है और अभी इन सेनाओं ने जयद्रथ को थोड़ा मुक्त किया है, अभी अपना धनुष उठाओ, गांडीव धनुष को, और तरकस से बाण निकालो और ये जयद्रथ का जो सर है उससे अलग कर दो। लेकिन फिर भगवान ने कहा उसमें एक चीज और भी है, क्योंकि जब ये जयद्रथ जिसको सिंधुराज कहा जाता है, सिंधुराज उसके जो पिता थे जयद्रथ के, बृहद क्षेत्र ऐसे कुछ नाम था, तो उन्होंने जब उनको ये जो जयद्रथ का जन्म हुआ था, तो उस समय एक आकाशवाणी हुई थी कि ये जो जयद्रथ है एक महान जो सेनापति है या सबसे बड़ा जो धनुर्धर है उसके द्वारा इसकी मृत्यु होगी, ये निश्चित है युद्ध के क्षेत्र में। तो उसके पिता को लगा अरे अभी अभी तो मेरे बच्चे ने जन्म लिया है, अरे मैं क्या सुन रहा हूँ कि एक युद्ध स्थल में उसकी मृत्यु होगी एक महान सेना नायक के द्वारा। तो उसके पिता ने तुरंत कहा जो भी व्यक्ति मेरे इस जयद्रथ के सर को सर अलग कर देगा, काट काट देगा, मारेगा। और जैसे वो सर पृथ्वी का स्पर्श करेगा, जिस व्यक्ति ने यह सर अलग किया है उसके भी सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो बहुत कठिन था जयद्रथ के सर को अलग करना, देहा से मारना। तो भगवान कृष्ण ने कहा, देखो अर्जुन तुम एक चीज करो, क्योंकि उनके जो पिताजी हैं, जब उनको ये पता चला तो उन्होंने आप जयद्रथ को राजा बनाया थोड़े दिनों में और खुद तपस्या के लिए चले गए। और उस दिन जिस दिन युद्ध हो रहा था संध्या के समय में, जैसे यशस्त्री संध्या, जो ब्राह्मण है तीन समय में भगवत भजन का कार्य करते हैं, सुबह के समय, दोपहर के समय, शाम के समय। संध्या जॉइंट्स होते हैं ना, दिन और रात का जॉइंट है, मॉर्निंग और नाइट का जॉइंट है, और दिन का जो जॉइंट है 12 बजे गायत्री आदि का जप करते हैं जो ब्राह्मण है। तो ये फिर संध्या उपासना करने के लिए गया ही था, तो भगवान ने कहा तुम क्या करो अर्जुन, इसका सर तो काटो, लेकिन काट के कहां फेंको, उसके पिता की गोद में। मतलब एक ही बार में दो मर जाने चाहिए। हम कहते नहीं, क्या कहते, एक ही इसमें दोनों की हत्या, एक तीर में दो निशान। तो फिर उन्होंने उनके सर को काटा भगवान के द्वारा, और अर्जुन ने कई बार मारे एक के बाद एक, और उस सर को जैसे कोई बाज पक्षी किसी अपने फूड को कैरी करके लेके जा रहा है, ऐसे वो अलग अलग बाण उस उनके सर को जयद्रथ के साथ। फिर भगवान ने क्या किया, जब ये सब खुश थे तो उसी समय सारा बादल आदि को हटाया और ऐसा चमकीला प्रकाश हो गया, सब कौरव सेना स्तंभित हो गई, आके फाड़ फाड़ के सूर्य की तरफ देखने लगे, और सामने देखा कि नजदीक अर्जुन है, कृष्ण है, उनके पीछे भीम है, युधिष्ठिर है, नकुल है, सहदेव है। तो फिर अर्जुन ने मार मारा, उसके सर को अलग कर दिया, अलग करके उस सर को इतना दूर भेजा, फेंका, वहां जाकर इनके पिताजी तपस्या कर रहे थे, उनके गोद में जाकर गिरा। अभी उनको पता नहीं कि क्या गिरा है मेरे गोद में। थोड़ी देर के बाद उन्होंने आंखें खोली और ऐसे उठ ही रहे थे, बैठे थे काफी देर से, तो अभी उड़ गए, उड़ते वो सर जमीन पर गिर जाता है पृथ्वी पर, और उसका स्पर्श करता है, और उसी क्षण और जो आसुरी पिता भी थे जयद्रथ के, उन्हीं जयद्रथ के समान उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कृष्ण यदि किसी की रक्षा करना चाहे, वास्तव में कोई भी व्यक्ति उसको बचा नहीं सकता। लेकिन हम कलियुग के जो सोचते हैं कि मेरा धन मेरी रक्षा करेगा, बुढ़ापे में मेरा धन काम में आएगा, मेरे लोग काम में आएंगे, कोई काम में नहीं आएगा। बुढ़ापे में तो एक ही धन काम में आएगा, वो क्या है, भगवान का पवित्र नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए व्यक्ति को ये भगवत गीता का संदेश है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे ये जो भौतिक जगत की हमारी बीमारी है, ये जो शरीर है, और ट्रीटमेंट क्या है, क्यों ये बीमारी है, कारण है इच्छा द्वेष समुत्थेना, और इसका ट्रीटमेंट है सर्वधर्मान परित्यज, और मेडिसिन क्या है, हरे नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवान का जो पवित्र नाम है उसका उच्चारण करना, ये वास्तव में हमारे लिए मेडिसिन है, और यही मंदिर का पर्पस है। किसी भी मंदिर में इन चार प्रकार की शिक्षा नहीं दी गई है, या ये सिखाया नहीं जा रहा है, जो साधु हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, मंदिर के पुजारी आदि हैं, तो वास्तव में वो मंदिर नहीं है। इस शिक्षा का बहुत महत्व है, शिक्षा की आवश्यकता है। तो इसलिए मंदिरों का यही उद्देश्य है कि साधु संघ प्रोवाइड करना, भक्तों का संघ, जिसके द्वारा हम भगवत भक्ति को सीखते हैं और समझते हैं कि हमारे जीवन में कृष्ण को कैसे धारण किया जाए। तो कृष्ण को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं केवल हम भक्तों के संग में बने रहते हैं। जितना अधिक भक्तों के संग में आते हैं, सेवा करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, जीवन के बारे में समझते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, घर में भी प्रैक्टिस करते हैं, तो वास्तव में हम कृष्ण को समझने लगते हैं। तो इसलिए भगवान को अपने जीवन में लाना ये हमारा परम और प्रथम कर्तव्य है। एक बार एक स्त्री अपने घर में थी, उसके साथ उनकी बहू थी, तो उनके घर के बाहर 3 बूढ़े लोग आ गए। तो बूढ़े लोग आ गए, सोचा ये अतिथि हैं, इनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। तो जो घर की जो स्त्री हैं, वो बाहर गए और बाहर जाकर उन्होंने उनको कहा कि आप आइए, हमारे घर में आइए, थोड़ा जल पान कीजिए, कुछ प्रसाद लेना है आप प्रसाद लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपके घर में अभी नहीं आएंगे, जब आपके पति ऑफिस से आ जाएंगे ना, तब हम आपके घर में आएंगे, अभी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो जो स्त्री है घर में बैठी रही काफी देर, और वो जो 3 लोग थे वो बाहर ही रहे, बहुत देर हो गई। जब संध्या का समय हो गया, घर के जो ओनर हैं वो ऑफिस से आए, और ऑफिस से आने के बाद घर के अंदर गए, तो उन्होंने पति ने कहा कि वो 3 लोग आपका आपके लिए वेट कर रहे हैं, कब से बैठे हैं, सुबह से शाम तक आपके लिए बैठे हैं, तो वो अंदर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा आपने अंदर क्यों नहीं लिया, अंदर आने लगे। उन्होंने कहा कि आप आओगे तब हम अंदर आएंगे। तो फिर वो स्त्री, उसका पति और उसकी जो बहू थी, ये 3 थे घर में। तो पति ने कहा कि हम 3 में से एक को आना अलाउड करेंगे घर में, 3 को नहीं। तो बहू ने पूछा कौन कौन है वो 3। तो उनको पता चला कि वो 3 व्यक्ति कौन है, एक था प्रेम, एक था सफलता और एक था धन। हाँ, सक्सेस और वेल्थ और लव, ये 3 पर्सनैलिटीज, 3 व्यक्ति घर के बाहर है। तो अभी पति ने कहा एक को अलाउड, एक को ही हम अंदर लेंगे, 3 को नहीं। तो पति सोच रहा था कि क्या अंदर आना चाहिए, धन अंदर आना चाहिए, अभी बेचारा ऑफिस जाना पड़ता है, किस लिए, धन के लिए, उसका मेन बिजनेस वही है, अर्निंग। तो उन्होंने कहा धन को हम अलाउड करेंगे घर के अंदर, फिर कोई टेंशन ही नहीं, कभी नहीं हमारे जीवन में, सब कुछ ठीक चलेगा। और हम भी वैसे ही सोचते हैं, जनरल सोच क्या है हमारी, धन आ जाए बस। लेकिन पत्नी कहती है कि धन नहीं, हमें क्या आना चाहिए, सफलता, हाँ, सक्सेस, यश, फेम। हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं। फिर बहू ना बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमान बहू हो कहती है ये दोनों नहीं, घर में तो प्रेम को आना चाहिए, लव। और प्रेम आएगा तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों कह रही हो, हम तो सीनियर है तुमसे, अभी अभी तो तुम आए हो हमारे घर में, तुम्हें क्या पता है कौन घर में आना चाहिए कौन घर में नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो प्रेम है, लव है, उनको हमें घर में एंट्री देनी चाहिए, प्रवेश देना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब हम वास्तव में जो धन है उसको सही रूप से, हाँ, प्रेम हो तो धन को सही रूप से एंजॉय कर सकते हैं, और यदि प्रेम है तो हमारा जो यश है स्वाभाविक रूप से सब जगह हम फैल जाएगा। तो उसका तात्पर्य क्या है कि वास्तव में, क्योंकि धन आ भी जाए तो कितना स्ट्रगल है, लड़ाई झगड़े, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, आपस में प्रेम बना नहीं रहता। कितने लोग हैं जिनके पास अमाप संपदा है, लेकिन देखा जाता है कि पत्नी सुसाइड कर रही है, पति को नींद नहीं आ रही, बेचारा रोज दवाई खाते जा रहा है, और घर के बच्चे सुन नहीं रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ है, स्ट्रगल है। क्यों, क्योंकि आपस में वो बॉन्ड नहीं है, प्रेममय संबंध नहीं है। तो फिर क्या सफलता, क्या यश फैलेगा उस फैमिली का, सब लोग वो कहेंगे अरे वो उनका बेटा तो ऐसा करता है, उनकी पत्नी तो ऐसी करती है, उनके घर का तो वैसा है, इस प्रकार से बोलते रहेंगे, तो सब यश नहीं फैलेगा, अपयश फैलेगा। लेकिन प्रेम का संबंध हो तो बाकी दोनों चीजें अपने आप स्थिर होगी, फैलेगी। तो प्रेम का मतलब कौन है, कृष्ण है, कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना या सेवा या भक्ति की भावना हो तो बाकी दो चीजें अपने आप हमारे जीवन में स्थिर हो सकती हैं। हाँ, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है पांडवों के जीवन से, और भगवद गीता का यही सार है कि भगवान को वास्तव में हमारे जीवन में इनवाइट करना। पांडवों ने अपने जीवन में कुछ चीज को प्राधान्यता दी, कुछ चीज को देखा, इतना स्ट्रगल, इतना संघर्ष पांडवों के जीवन में आया था कुंती द्रौपदी के लाइफ में, हाँ आप जब पढ़ते तो रोना आ जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कृष्ण को अपने जीवन से हटाया नहीं, उनको प्राथमिकता दी। और इसलिए देखते हैं हजारों सालों से लोग उनका गुणगान कर रहे हैं और भगवान को पांडव बहुत अधिक प्रिय है। भगवान उनके लिए दूत बने, मैसेंजर बने, उनके लिए वो ड्राइवर बने, चारिया ड्राइवर, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। तो इस प्रकार से भगवद गीता वो ग्रंथ है जिसको समझने से, जिसका अध्ययन करने से और जिसको अपने जीवन में धारण करने से हम कृष्ण को अपने जीवन में परिपूर्ण रूप से ले आते हैं। इसलिए अभी नया साल आ रहा है और इस साल का ये आपका आखिरी प्रोग्राम है, तो आप सबको प्रयास करना चाहिए कि अभी नया साल में नई शुरुआत है ना, नई शुरुआत करें। मैं तो हर रोज के जो दिन है वो सब एक जैसे ही है, तो इसलिए नई शुरुआत क्या है, नए साल में हमें कुछ व्रत लेना चाहिए, वाउज लेने चाहिए नए साल में कि मुझे कुछ करना है नए साल 2014 कि मुझे क्या करना है। कम से कम मैं रीडिंग प्रभुपाद बुक से भगवद गीता को रोज पढ़ूंगा या इतनी मालाओं का चांद करूंगा, इस प्रकार से सेवा करूंगा। और जब आप इस व्रत को लेते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसको कंटिन्यू करें, अन्यथा हमारा शरीर हम बुढ़ापे की ओर जा रहा है। जितना जितना आयु बढ़ेगा उतना उतना हम भगवत भक्ति करने में सक्षम नहीं होंगे, हमारे लिए कठिन होता जाएगा, कृष्ण में मन नहीं लगेगा। तो आज के श्लोक का यही सार था, भगवान कहते हैं मुझ में मन लगाओ, जो मुझ में मन लगाया हुआ है वो वास्तव में मुझ में निवास करता है। तो भगवान में मन लगाने के कई उपाय हैं। हाँ, पहला उपाय है कि आप भक्तों के संग में बने रहें, भगवान के भक्तों के संग में आए, फिर नेचुरली दूसरी चीज है फिर भगवान का नाम आप जप कर पाते हैं, भगवान के बारे में श्रवण कर पाते हैं और फिर उनकी सेवा कर पाते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।